जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन बल्लभ गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारे, गोपी जन बल्लभ जय राधा माधव कुंज इधर 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 सामने जय थोड़ा थोड़ा डांस करिए माधव कुंज बिहारी, जय राधा बजाओ बढ़िया से, गोपी जन बल्लभ सभी ताली बजाए, गिरिवर धारे लभ गिरिवर धारे, जय राधा माधव कुंज बिहारी। उनके ऊपर सुनो, प्रभु जी के ऊपर कैमरा लगो, कैमरा हाँ श्री राधे, वाह। अच्छा ये वाला किसको पता था? नहीं नहीं नहीं, खत्म खत्म नहीं हुआ। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन, यशोदनंदन जमुना तिर बन चारी, जमुना तिर बन राधा माधव कुंज बिहारी, राधा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्ट उत्तर सत्य श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, गौर प्रमानंदी। अच्छा देखो आपके भीतर ये सब चीजें हैं, किसी को पता नहीं था। नहीं बढ़िया प्रवचन करते हैं ये तो हमें भी पता है, लेकिन अच्छा नृत्य करते हैं ये किसी को पता नहीं था आज तक। चलो बहुत अच्छा हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम अष्टम स्कंध अध्याय एकविंश श्लोक क्रमांक 24 25 और 26 ठीक है लिखा हुआ है 26। हाँ ठीक है 26 पढ़ लेते हैं। अथ तार्क्षसुतो ज्ञात 8 21 26। अथ तार्क्षसुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकर्षितं बबन्ध वारुणैः पाशैर् बलिम् सुत्यहनि क्रतौ। अथ तार्क्षसुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकर्षतम् बबन्ध वारुणैः पाशैर् बलिम् सुत्यहनि क्रतौ। अथ तार्क्षसुतो ज्ञात्वा विराट प्रभो चकर्षतम् बबन्ध वारुणैः पाशैर् बलिम् सुत्यहनि क्रतौ। पढ़िए। माता जी और अथ तत्पश्चात तार्क्षुत गरुड़ ने ज्ञात्वा जानकर विराट पक्षिराज गरुड़ प्रभु चिकीर्षितम भगवान वामन देव की इच्छा से बबंधा बंदी बना लिया वारुणी वरुण से संबंधित पाशेई रस्यों से बलिम महाराज बलि को सूत्ये सुमरस पान के दिन अहनी दिन क्रतव यज्ञ के समय। तात्पर्य और अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त हो जाने के बाद सोमपान के दिन पक्षराज गरुड़ ने अपने स्वामी की इच्छा जानकर बलि महाराज को वरुण पास से बंदी बना लिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नित्य संगी गरुड़ श्री भगवान की आंतरिक इच्छा को जानने वाले हैं। बलि महाराज की सहिष्णुता तथा भक्ति असंदिग्ध रूप से अति श्रेष्ठ थी। सारे विश्व को बलि महाराज की महती सहिष्णुता दिखलाने के लिए गरुड़ ने उन्हें बंदी बना लिया। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्त वांछाकल्पतरु रास रासेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्राणधन नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत सेवा भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए उनके अभिन्न वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के आश्रय में श्री श्री कृष्ण बलराम जी के प्रांगण में हम भक्तजन यह पवित्र वेला में एकत्रित हुए हैं। ये हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। कथा का प्रसंग चल रहा है महाराज बलि और इसी क्रम में हम लोग पहुंच चुके हैं कि भगवान को बलि महाराज ने त्रिपाद भूमि दान देने का संकल्प किया और जलम तु पतिस्तम हस्ते बामन भूत्वा अबामन। बंसीधर जी टीका में लिखते हैं जब बलि महाराज संकल्प करके दान देना चाहते थे बलि बामन भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसे केवल कथन से नहीं होगा, आप शंख उठाओ और शंख में जल धारण करो और हमारे हाथ में दो। त्रिपाद भूम्या ददे, हम आपको दान कर रहे हैं। ऐसे केवल मुंह जबानी से काम नहीं चलेगा, आप मुकर जाएंगे। तो तत्कालीन समय में ये चलता था, लिखा पढ़ी वाला काम तो नहीं था उस समय। ऐसा जैसे अदालत में आजकल लिखाई पढ़ाई हो रही है, उस समय ये वाला सिस्टम नहीं था। व्यक्ति अगर गुरुजनों के समक्ष शंख में जल धारण करके और भगवान का नाम लेकर के संकल्प करता है तो वही वचन उसका परम श्रेष्ठ माना जाता था। वही पारंपरिक पद्धति के अनुसार बामन भगवान ने कहा नहीं नहीं बलि, आप ऐसा करो कि शंख में जल लेकर के अर्पण करो। और बामन भगवान मांगने गए थे और बलि महाराज प्रहलाद महाराज जी के वंशज हिरण्यकश्यप इनके वंशज महाराज बलि वो दान दे रहे थे। बंसीधर जी कहते हैं जलम तु पतितम हस्ते, जैसे बामन भगवान के हाथ में वो शंख का जल गिरा, वामन भूत्वा अवामन, बामन कहते हैं छोटे व्यक्ति को, बोना देहाती भाषा में कहते हैं बोना, संस्कृत भाषा में कहते हैं वामन, छोटा छोटे कद के। अब देखो मंदिर में एक व्यक्ति आते हैं है ना, इतने छोटे वामन है ना, उनको वामन कहते हैं। पहले सर्कस में बहुत होते, आजकल भी सर्कस में होते हैं वामन। वामन को किसने देखा नहीं, तो सर्कस देखो, सर्कस में होते हैं, बाकी नॉर्मल होते नहीं, उनका रोजी रोटी चलने के लिए सर्कस में जाना पड़ता है। तो वामन भगवान चले थे और वो वामन नहीं रहे, वो क्या बने, विराट। वामन भूतवा अवामन, छोटे नहीं हुए वो, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कल्पना देते, ईश्वर का रूप को कोई कल्पना नहीं कर सकता, इन्फिनिट अनंत, अनंतत्वात अनंतम प्रचक्षते। भगवान चूंकि अनंत है इसलिए उनको मेजर कोई नहीं कर सकता। द्वितीय स्कंद भागवत में लिखा हुआ है उनका तल अतल वितल 14 भुवन उनके शरीर में ही संरचित है। विशाल मूर्ति जब धारण किए और उन्होंने अपना प्रथम पग विस्तार किया, पूरी धारा नाप ली, इसी क्रम में आप 21वें अध्याय तक पहुंच गए। दूसरी पग जब बढ़ाया तो वो पग, वो चरण धरती को, स्वर्ग को, महाजन को पार करके सत्यलोक तक पहुंचा। तप पार करके सत्यलोक में जब पहुंचा तो सत्यलोक की जो तेज है, सत्यलोक की जो आभा, जो प्रकाश है, वो अस्तमित हुआ। यस्य प्रभा प्रभवतु जगदंड कोटि कोटिशु अशेष वसुधा दिव्य वसुभिन्न, जिनकी प्रभा से सभी प्रभावित है। प्रभा कहते हैं प्रकाश को, ज्योति को। भगवान का चरण, भगवान के चरण नख जब ब्रह्मांड के उस कटाव को छेद करके छिन्न भिन्न करता हुआ सत्यलोक तक पहुंचा, तो वहां पर ब्रह्मा जी का जो तेज है, जो सत्यलोक का प्रभा आभा, वो सब निष्प्रभ हो गया। हाहाकार मचा, दौड़ के आए, सभी आए, ब्रह्मा जी आए, नंद उनके जो सनत सनक सनातन सनंदन आए, मरीचि आदि ऋषि आए, ये सब ब्रह्मा जी के जिनके पुत्र परिवार सब आए। आहा, भगवान का स्वरूप है, भगवान के चरण और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है मित्रों। तो ब्रह्मा जी अर्घ्य आदि लेकर के उनका चरण का प्रक्षालन किया और समस्त वेद वेदांत प्रकट हो गए। ये भागवत आज जैसे ही कम से कम आसन पे रखे हुए है, ऐसा पहले नहीं रखा जाता था। मैंने कंप्लेन किया था, मैं कहा ना ना भागवत साक्षात विग्रह, फिर भी आज कपड़ा किसने नहीं रखा, रखना चाहिए। इस प्रसंग में लिखा हुआ है कि वेद वेदांत साक्षात मूर्तिमान होकर भगवान की स्तुति करने लगे। जैसे हमको आसन चाहिए तो ये एक साक्षात विग्रह है ना, इनको ऐसे ही रखने से, इनका सम्मान करने से ये भी प्रसन्न नहीं होते। श्रीमद् भागवतम मैंने देखा कई लोग बेड पर रख देते हैं। देखो हम लोग जो पढ़ते हैं वो तो एप्लीकेबल है ना, खाली तो सुनने के लिए नहीं है। मान लीजिए किसी भक्त ने सुना कि वेद वेदांत साक्षात प्रकट होकर के स्तुति करने लगे, तो फिर वेद वेदांत क्या हो गए, जीवित है, जीव है, सजीव है, तो उनकी ट्रीटमेंट ठीक वैसे होनी चाहिए जैसे महाभागवत है। और ये शिक्षा हम लोग गुरुद्वारों से ले सकते हैं। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब की जितनी इज्जत है, कहीं है ना, सब लोग पंजाब पंजाब से हो, आप चले जाइए बिना कपड़े का और बिना अशुद्ध शुद्धिकरण, वो छूते तो नहीं है, बड़े कायदा से, बड़े बहुत ही कायदा से वो ग्रंथ रखते हैं। देखा आप लोगों ने, नहीं देखा, कितनों ने देखा है गुरु ग्रंथ साहिब जहां पर कैसे रखते हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने गुरु की आज्ञा मानी, हम लोग पढ़ते तो वही है, जबकि हमसे सीखना चाहिए, हमसे सीखना चाहिए, पर हम नहीं सीखते। वेद वेदांत आदि अरे अरे तुम्हारा वो मुंह पोछा वाला नहीं चलेगा, ना 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 वो तो यहाँ रहता है नया कपड़ा, वो आज कहीं चला गया। चलो कम से कम भाव तो उत्पन्न हुआ, बोलने से तो भाव उत्पन्न हुआ, अच्छी बात है। इसलिए सत्संग में आने से ही परिवर्तन होता है, और कोई कोई मीडिया नहीं है। जो जे यतन जहां जे पाई सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक हूं वेदन अन उपाव। एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो वेद वेदांत तो सब प्रत्यक्ष होकर के स्तुति करने लगे, पुराण आदि सब स्तुति करने लगे, भागवत इसलिए हमने वंदन किया, ये साक्षात इनका स्वरूप है। सनातन गोस्वामी तो बार बार वंदन करते हैं भागवत के, सर्व शास्त्राब्धि पीयूष सर्व वेदिक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्व भागवत प्राण श्रीमद भागवत प्रभो कलेर ध्वांतोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितः परमानंद पार्थाय प्रिम्बर्षिक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुते। मदैक बंधु मत्संगिन मदगुरु मन महाधन मन निस्तारक मदभाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधो साधुता दायन अति नीचो पितारक हाना मुंचे कदाचिन माम प्रेमणा हृत कंठयो स्फुरा। जड़ वस्तु के लिए ऐसी प्रार्थना नहीं होती, चेतन है चिन्मय है। तो सबने पद पद प्रक्षालन किया, भगवान को दर्शन करके सभी प्रफुल्लित आनंदित हुए, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्वरूप के अनुसार वो क्रिया प्रदर्शन किया। जाम्बवान कई बार धरती की परिक्रमा कर ली। रामचरित मानस में तुलसीदास गोस्वामी जो लिखते हैं, जाम्बवान कहते हैं जब हनुमान जी गए, वो कोई जा नहीं रहा था वहां लंका के लिए, अंगद कहा चला तो जाऊंगा वापिस नहीं आऊंगा, कोई 10 जोजन कोई 5 जोजन कोई 8 जोजन उसको बताने लगे। तो जाम्बवान ने कहा अरे तुम डरते हो, जब मैं जवान था ना, अब वामन का जो अवतार हुआ था मैंने कितनी बार 7 बार ना कितनी बार परिक्रमा लगाई, तुम ये लंका कूदने के लिए डरते हो, अब तो मैं वृद्ध हो गया। तो जाम्बवान ने उत्साह भरने के लिए कहा था, तो जाम्बवान ने भी ऐसा ही किया था, परिक्रमा कर ली थी। तो सबने भगवान का आदर किया, सब किया। उसके बाद इस 21वें अध्याय में उसके पश्चात क्या होता है, बलि महाराज जी को वामन भगवान ने डांटना शुरू किया, बताओ त्रिपाद भूमि देने के लिए अपने संकल्प किया और मैंने तुमसे वचन ले लिया। क्या वचन ले लिया था वामन भगवान ने, कौन बताएगा? हाँ? 3 पद जमीन, ये पूर्ण उत्तर हुआ? पूर्ण उत्तर कोई कहेगा जिसमें गलती ना हो। हाँ? हाँ, समितानी पदा मम, त्रिपाद भूमि तो चाहिए, ऐसा नहीं कि घटोत्कच के चरणों के मुताबिक ही चाहिए, भीम के ऐसे ऐसे ना 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 ना, मेरे चरणों के मुताबिक हम त्रिपाद भूमि लेंगे। आप पढ़िए 20वें अध्याय में, समितानी पदा मम, मैं अपने चरणों से नाप के लूंगा, है ना प्रभु, पदानी त्रीणी समितानी पदा मम, अपने चरणों से। और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, सही सही बोलते हैं, बिल्कुल सत्य परम सत्य सत्यम विशुद्धम सत्य सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। तो भगवान का अस्तित्व सत्य में ही है, झूठ क्यों बोलेंगे, बोले मेरे चरणों से। जब दोनों चरणों से धरती और ये आकाश तक सत्य लोक तक नाप लिए, तो बलि महाराज को डांटने लगे कहां है त्रिपाद, तीसरा चरण कहां रखेंगे बताओ ना, डांट फटकार रहे थे। तो उसी समय बलि महाराज जी के जो पार्षद है विप्रचिते राहु नमुची इल्वल बातापी, ये जितने भी है असुर समाज के, अरे 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 हमारे मालिक हमारे स्वामी अब ये यज्ञ के दीक्षा में दीक्षित है, कुछ नहीं बोल रहे, शांत रह रहे हैं, और ये विष्णु ये जो बामन है ये बिल्कुल बामन नहीं, ये ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण इस तरह से कपट नहीं करता, ये तो महाकपटी ठहरा, ये विष्णु है, इनको बांधो पिटो। और वो बिल्कुल उनका ग्रुप आया, और भगवान विष्णु के ग्रुप भी तैयार थे। विष्णु के ग्रुप में कौन कौन थे, जय विजय अच्छा जय विजय को सांप लगा था, इधर आए थे फिर वहां कौन था? आपने सब सुना है कि भाई जय विजय को तो श्राप लगा, इधर आ गए तो फिर जय विजय लिखा हुआ है इसमें। आप लोग यहां तक पढ़ के आए हो, जय विजय का नाम नहीं लिखा हुआ, जय विजय हाँ है ना। तो जय विजय जो है वो जय विजय का एक अंश आया था, ऐसा नहीं कि जय विजय पूरा पूरा आ गए। आध्यात्मिक जगत में उसको समझना इतना आसान नहीं है। जैसे विष्णु यहां दर्शन दे दे इसका मतलब नहीं कि वैकुंठ खाली है, ऐसा नहीं होता, वैकुंठ भी पूरा रहता है, यहां भी दर्शन देते हैं। सो अनंत है, जय विजय वहां भी थे यहां भी है, जय विजय। और दो जोड़ी बल प्रबल, याद रखो जय विजय बल प्रबल, याद बड़े सरल है याद रखने में। जय कह दो उसमें बी लगा दो विजय, बल कह दो उसमें प्र लगा दो प्रबल, जय विजय बल प्रबल। और नंद सुनंद ये छह नाम तो हम बता दिए। पुष्पदंत्र एक ना पुष्पदंत, भगवान शिव का भी पार्षद पुष्पदंत, भगवान विष्णु के पार्षद भी पुष्पदंत। आप पढ़ लेना अनेक अनेक वो सब निकल पड़े सब जब लड़ाई आपस में। अच्छा देखो बलि महाराज जी के जो पार्षद वो भी सही कह रहे, वो कह रहे हैं कि हमारे स्वामी अभी यज्ञ दीक्षा से दीक्षित है, कुछ नहीं बोलेंगे, कुपित नहीं होना चाहिए। हमको क्या सीखना चाहिए? जब हम जप करते हैं कोई अनुष्ठान में बैठते हैं हमको क्रोध पर संयम रखना चाहिए, बातें बूते नहीं करना चाहिए। अब देखिए असुर समाज में जो अनुष्ठान हो रहा है वो बातें नहीं कर रहे हैं, और हम लंबा मोबाइल लेके जप करने से जप में सिद्धि हो जाएगी? होगा ऐसा? ये सब कैसा है इसको? ये ठीक है वैसा काम है जैसे सूर्य को आईना दिखाना है। बलि महाराज जी के लिए पढ़िए, वो कहते हैं कि ना ना हमारे स्वामी यज्ञ दीक्षा से दीक्षित हैं और कुछ नहीं बोलेंगे, कुपित गुस्सा नहीं करेंगे। जब भागवत अनुष्ठान हम लोग करते हैं तो उसमें कहा जाता है यजमान से कि नीचे सोना और 7 दिनों तक क्रोध नहीं करना, ऐसा कहा जाता है। क्रोध करने से खत्म, ब्रह्मचर्य आदि पालन करना, क्रोध नहीं करना, झूठ कपट नहीं करना, अशुद्धि भाव से भोजन आदि नहीं करना, तब जाकर के कोई काम बनता है, वैसे नहीं बनेगा। ये सेंटिमेंटल ताकत है। महात्मा गांधी नाभि के ऊपर से कपड़े नहीं पहने तो पूरी समाज के ऊपर उनकी दबाव पड़ गई। क्यों पढ़े क्यों नहीं पहने? बोले गरीबी जो है यदि सभी को कपड़ा नहीं मिल रहा है तो हम एक वस्त्र का हम त्याग करते हैं गरीबी के लिए। तो उनका जो सेंटिमेंट का दबाव है पूरा समाज पर पड़ा, क्योंकि ये एक ही तत्व है। आप कुछ सोचोगे, आप अगर अनुष्ठान ऐसे ही करते हैं तो काम बनेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई अनुष्ठान करते हैं, बढ़िया से भोजन करके आपने अनुष्ठान किया, वो सफल नहीं होगा। होगा हो भी सकता है, लेकिन आपने व्रत ले लिया कि नहीं हम भोजन नहीं करेंगे जब तक मेहमानों की मेहमानी नहीं हो जाएगी, हवन नहीं हो जाएगा, पाठ नहीं हो जाएगा, हम नहीं करेंगे, कि नियम कर लेंगे। जैसे हरदास ठाकुर करते थे, पागल थोड़ी थे, उनको पता था ये कायदा, क्योंकि विश्व स्तरीय ये दबाव डालता है। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं करते। हमारे वैदिक मंत्र क्यों कहता है कि असतो मा सदगमय ओम शांति, प्रत्येक परिवार में जो शांति मंत्र का जप होता है वो एक कॉस्मिक स्तर पर वो एक बहुत हाई प्रेशर डालता है, तब हो जाता है काम। तो वैसा ही बलि महाराज अपने कर्म को संपादित करने के लिए बिल्कुल नियम पूर्वक कहीं क्रोध नहीं करना, कुछ नहीं करना, और सहन करते थे। आपको और भी मालूम होगा, ऐसा नहीं कि दंडकारण्य के जो ऋषि थे वो कमजोर थे, अकेले विश्वामित्र ही समर्थ थे मारीच और सुभाव को मारने के लिए, नहीं थे। लेकिन चूंकि वो अनुष्ठान में व्रती थे इसलिए वो शस्त्र नहीं उठा रहे थे, कहना एक क्षत्रिय को बुला लेंगे काम करेगा। अनुष्ठान के समय शांत रहना, काम क्रोधादि वर्जित होना, तब भी सफल होगा, नहीं तो सफल नहीं होगा। परिक्रमा के लिए कहा जाता है जूता लगा के करते हैं, उसे नीचे हो, वो उसको परिक्रमा नहीं कहेंगे, परिक्रमा थोड़ी कहेंगे। जब हमारे 32 अपराध में लिखा हुआ है कि भाई जूता लगा करके मंदिर जाना मना है और धाम और विग्रह में कोई अंतर नहीं है, तो जूता लगा के परिक्रमा करने से परिक्रमा फल कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। सीधी सीधी बात है, कॉम्प्रोमाइजिंग बात क्या है? मंदिर को जूता लेकर नहीं जा सकते, परिक्रमा कैसे जूता लगा देंगे? परिक्रमा करने की जरूरत क्या है? जिसके टांगों में दर्द है परिक्रमा क्या करे, क्यों करे? नाम जप करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और नए कपड़े फपड़े बांध दिया, वो बात अलग है। सो इससे सीखना चाहिए, बलि महाराज अनुष्ठान करते हैं कुछ भी नहीं बोले, शांत। तब उनके पक्ष के लोग लड़े, पर विष्णु पार्षद के साथ जब असुर पक्ष लड़ते हैं, विष्णु पक्षान इवासुरा, विष्णु पक्ष के सामने असुर पक्ष का हार ही होता है, कभी नहीं जीत सकता। विष्णु के सामने कोई भी टकराएगा, एक कहावत है ना, जो हमसे टकराएगा सो चूर चूर हो जाएगा। तो वैष्णव शक्ति के साथ किसी को भी टकराना नहीं चाहिए। दुर्वासा ने टकराया, चूर चूर है नहीं, भगवान शिव टकराए, चूर चूर हो गए। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहे कि उनके साथ लड़े ना। तो बलि महाराज ने उनको सांत्वना दी, हा देखो देखो ये ठीक नहीं है, तुम लड़ते हो सही है, चुपचाप अब तुम अभी लड़ोगे पीट के जाओगे, कोई तुमको तुम्हारी पीठ में पड़ने वाला नहीं, जो प्राण है प्राण बची तो लाखों पाए। भाई विचार करो, समय बड़ा बलवान होता है, कल हमारा समय अनुकूल था, तुम ही तो उनके ऊपर विजय पा करके स्वर्गलोक में आए, आज समय उनका है, उनके पक्ष में, इसीलिए एक काम करो, तुम अस्त्र त्याग करके अपनी जगह चले जाओ, रसातल चले जाओ। तब बलि महाराज कहते हैं, बहुत सारी चीजें आपने सुना होगा, हे विप्रचिते हे राहो, हे नेमे श्रुयतम बचह, मा युध्यत निवर्त ध्वम, न कालो अयम अर्थकृत। हे विप्रचिते हे राहु, ये सब बलि महाराज जी के परिवार के है सब। आप जब हिसाब किताब करोगे, ये भांजे भांजे भाई भतीजे ये सब है, तो कहते हैं कि ना 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 ना, ये काल हमारे अनुकूल नहीं है, तुम एक काम करो अभी युद्ध मत करो। इसी सिलसिले में हम यहां पहुंचे 24वें श्लोक में, एतान वयम विजयश्यामो यदि दैवम प्रसिद्धति तस्मात कालम प्रतीक्षाध्वम योनो अर्थत्वाय कल्पते। ये 24वां श्लोक जो है, इसमें तात्पर्य नहीं है पर अर्थ यही है। बलि महाराज कहते हैं, जब तक भाग्य हमारे अनुकूल ना हो तब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अतएव हमें उस अनुकूल समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब हम उन्हें पराजित कर सकेंगे। देखो सबका अनुभव होगा, ये संसार में कभी कभी दो स्टूडेंट सेम मेहनत करते हैं पर एक की नौकरी लग जाती है, एक की नौकरी लगती नहीं। कभी कभी ज्ञानी व्यक्ति भी नीचे आ जाता है, अज्ञानी व्यक्ति भी ऊपर चढ़ जाता है, इसके पीछे उनका प्रारब्ध कर्म ही जिम्मेदार है। ये बिल्कुल आप इसमें किसी पर दोषारोपण करने की जरूरत है नहीं, हमारा ही कर्म हमको सुख देता है, हमारा ही कर्म हमको दुख देता है। इसको दैव बल कहते हैं, इसको प्रारब्ध कहते हैं, इसको भाग्य कहते हैं। इसीलिए व्यक्ति भाग्यवादी नहीं होता। हम बहुत बार अनेक बार भक्तों से कहे, हम भी भाग्य को मानते हैं पर सामान्य जनता जैसे मानती है वैसे नहीं मानते ना। जो भाग्यवादी है वो आलसी नहीं होगा, वो कर्तव्य परायण होगा, वो कर्मनिष्ठ होगा। भाई जो मैंने किया, जो 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 बोया सो काटा, तो कल बोया था अभी काट रहे हैं, तो आज बोएंगे तो कल कटेंगे। इसलिए भाग्यवादी होने का अर्थ होता है परिश्रमी होना, अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना। कहीं गीता में कहीं नहीं, किसी शास्त्र में नहीं है। पर सबसे कायर और नाकाम व्यक्ति जो है वो लास्ट में भाग्य को लेकर के अपना पल्ला झाड़ते हैं ना। बल्कि भाग्यवादी व्यक्ति ज्यादा कर्मनिष्ठ हो जाएगा, वो कहेगा भाई हमारे हमने ये कर्म किया था, ये गलत ये परिणाम हमको भोगना पड़ा है, अब हम अच्छा करेंगे तो अच्छा भोगेंगे। भाग्यवादी का यही है। तो कालो अयम ये कहते हैं कि देखो हमारे ऐसे कहीं ना कहीं अपराध हुआ है, जो भी हुआ है, तो अभी हम जीत नहीं सकते, अभी विष्णु का पक्ष बहुत प्रबल है, तुम लड़ो मत। वो अनुकूलता की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब हम उन्हें पराजित कर सकेंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि भक्त हम हो गए तो हमेशा हमारे लिए सब सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी, कभी नहीं होगी। अगर अनुकूलता होती, गीता में भगवान ने कहा एक श्लोक में, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। यदि केवल सफलता हमको मिलती तो भगवान ये बात नहीं कहते। और एक श्लोक है, क्या है वो, तांतितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। भक्तों के जीवन में सदैव सुख ऐसा नहीं आएगा, दुख भी आएगा। तो उस परिस्थिति में भक्तों को साम्य अवस्था में स्थित रहना चाहिए। ना 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 ना, मेरे मित्र, मेरी माँ, मेरे पिताजी अगर रोज हमको रसगुल्ला खिलाते थे, आज करेले की भाजी मेरी मैया खिला रही है, तो क्या बुराई है? क्यों खिला रही है आज नीम की चटनी? कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो जो माँ हमको मिठाई खिलाती है, वही माँ हमको नीम की चटनी खिलाती है। क्यों खिलाती है? क्योंकि मिठाई खाते खिलाते खिलाते पेट में कीड़े पड़ गए, अभिमान आदि दोष हो जाता है, ईश्वर की सत्ता को व्यक्ति नकारता है। इसलिए तो कभी कभी भगवान भक्तों के लिए यही करते हैं। आप देखेंगे भगवान ने जन्म मृत्यु जरा व्याधि को मिटाने के लिए कहा, लेकिन शीत गर्मी मान अपमान को बर्दाश्त करने के लिए कहा, क्योंकि ये मिटाया नहीं जा सकता। दिस इज द वेरी नेचर ऑफ नेचर, ये दुनिया का दस्तूर है, दुनिया का स्वभाव है, ये आएगा सुख दुख। किसी के भाग्य में देखो, कुंती के भाग्य में, पांडवों के भाग्य में, ध्रुव के भाग्य में, प्रहलाद के जीवन में हमेशा सुख दुख को उतार चढ़ाव आता रहता है। तो जो भक्त होता है वो बैलेंस मेंटेन करता है, भगवान की कृपा को देखता है। बलि महाराज चूंकि महाजन है, 12 महाजनों में अन्यतम महाजन, तो उन्होंने विचार किया, ना ना ना, ये ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, इतना लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है, तुम शांत रहो, अपनी जगह चले जाओ। तो बात मान लिए, चले गए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पत्युर निगदितम सत्वा दैत्य दानव जुत्थपा रसाम निर्विभीषु राजन विष्णु पार्षद ताड़िता। विष्णु पार्षद ताड़िता, दो बात आ गई। विष्णु के पार्षदों ने खूब पीटा, अर्थात उनका उनको उन पर जो लड़ाई हुई, इन लोगों को विजय मिली। दूसरी बात है कि अपने पति ने कहा, अपने मालिक ने कहा, पत्युर निगदितम श्रुत्वा विष्णु पार्षद ताड़िता। इनके पास कोई उपाय नहीं था, अपने स्वामी कह रहे हैं कि भाई युद्ध छोड़ दो, ठीक है मान लेते हैं। और वैसे ही इसका बल, इसका पक्ष जो है वो प्रबल है, तो दोनों परिस्थिति में यहां से चला जाना ठीक है। तो रसातल में रसाम निर्विशु राजन। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, अपने स्वामी बलि महाराज के आदेश के अनुसार दैत्यों तथा दानवों के सारे सेनापति ब्रह्मांड के निचले भागों में प्रविष्ट हुए, जहां उन्हें श्री विष्णु के सैनिकों ने खदेड़ दिया था, चले गए। अब जो श्लोक आज लिखा हुआ है, अथ तारख्य सुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकित्सितम। जब सेना चली गई, अब सेनापति महाराज बलि ही रह गए, अकेले रह गए। देखो भक्त का जीवन ऐसे ही होता है, देवहूति मां अकेली रह गई, द मोस्ट फॉर्चुनेट लेडी इन द वर्ल्ड। ऐसी स्त्री दुनिया में कोई नहीं, शायद कोई एकादुका कोई हो जाए। मां देवहूति मनु महाराज जो भगवान के अवतार, उनकी पुत्री, महान शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र कर्दम की पत्नी और सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल की जननी, बेटा, पुत्र, पति, पिता, तीनों एक प्रकार से भगवान के अवतार और भगवान के भक्त। अब महान शक्तिशाली, लेकिन अकेली हो गई जीवन में, पति छोड़ के चला गया, पुत्र भी छोड़ करके गंगा सागर मेले में चले गए, अब गंगा सागर मेला चल रहा है, अकेली हो गई। जीवन में हमेशा अकेलापन आता है। अब भक्ति करने के लिए अकेलापन थोड़ा चाहिए, नहीं तो बातें नहीं कर सकते आप भगवान प्रभु के साथ। दिल दिल तब जाएगा जब अकेला कोई होगा, वो भी चाहता है कि तुम और मैं, हमारे बीच में कोई ना आवे। बलि महाराज अकेले हो गए, कोई नहीं है, और जो भी है वो शांत है, विरोधी पार्टी बिल्कुल शांत, हथियार डाल के खड़े है ना, कोई नहीं था, कोई नहीं था, एकदम अकेले जीवन। अथ तार्क्ष सुतो ज्ञात्वा, भगवान आए थे नंद सुनंद बल प्रबल कुमुदाक्ष पुष्पदंत और गरुड़। गरुड़ को तार्क्ष सुत कहते हैं, कश्यप जी का एक नाम है तार्क्ष। मरीचि के देखो नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, उन्हीं की कई पत्नियां। हमारे सबके पिता एक ही है, सही में सनातन धर्म का जो पतन हुआ जाति भाति लेकर के, हमको सोचना चाहिए गधा भी हमारा भाई है, कुत्ता भी हमारा भाई है, कुत्तिया भी हमारी बहन है, हमारे बाप पिताजी एक ही है। कश्यप के, कश्यप की पत्नी का नाम है शर्मा, तो शर्मा से जितने पंचनखा वाले सब आ गए, कुत्ते कुतिया गधे घोड़े सब आ गए, तो उन्हीं से ही सब जीवात्मा का विस्तार हुआ। सब सो गरुड़ जी के मां का नाम बिनता, आप सब जानते हैं बिनता नंदन। गरुड़ भगवान की सेवा में, और अरुण भी, अरुण सूर्य की सेवा में। अब जब जगन्नाथ मंदिर जाएंगे, गरुड़ भीतर अरुण बाहर, अरुण खंभा पहले, गरुड़ खंभा गरुड़ स्तंभ भीतर, दोनों भगवान की सेवा में। तो ये सब मिले है। और जो भक्त होता है ना, वो भगवान के हार्दिक इच्छा को जान लेता है। एक भक्त का नाम बताओ जिसने भगवान की इच्छा को जान लिया था, एक हाँ? रूप गोस्वामी, ठीक है, हरिदास ठाकुर जान लिए थे, प्रभु आप चले जाओगे। अर्जुन जान लिया था अश्वत्थामा के केस में, भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधु न हंतव्यो आतताई बधारण, ब्राह्मण को नहीं मरना चाहिए, आतताई को नहीं छोड़ना चाहिए, मेरी इच्छा को सम्मान दो, तुम्हारी प्रतिज्ञा पालन करो, भीमसेन को खुश करो, तुम्हारे भाई युधिष्ठिर वो भी शांत रहे, क्या सो ये सारी बातें जो है भगवान के हृदय को व्यक्ति तब जान लेता है जब व्यक्ति भगवान के करीब होता है। अब ये तार्क्ष सुत गरुड़ इन्होंने जान लिया, ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकित्सितम बबंधम बारुणई पासे, बलि को सीधा बांधे, कैसे बांधे, बारुणई पासे। बारुण पास माने वरुण, जो सबसे शक्तिशाली इस संसार में, जो शक्तिशाली देवता है वो सबसे शक्तिशाली है महाराज वरुण। नारद मुनि से पूछा, नारद मुनि ने कहा वो वरुण के पास है, वरुण जी ने कहा कि देखो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं नहीं लड़ सकता हिरण्याक्ष से, कहा तुम्हारे साथ लड़ने वाला आने वाला है। आएगे भगवान, आए 12 भगवान रूप में, वो उत्क्षिप्त वाल खचर कठोर शटम विधुन्वन खर रोम सत्वा, तो उसको देख करके हिरण्याक्ष के साथ उनकी लड़ाई हुई, आप सब जानते हैं। हम ये निवेदन कर रहे थे कि भगवान के हृदय की बात भक्त जान लेता है। तो गरुड़ जो है बांधे वरुण पास से, वरुण जो शक्तिशाली, उनका मंत्र भी शक्तिशाली, एक मांत्रिक प्रक्रिया है, ये रस्सी फसी से नहीं बांधा, एक मंत्र है, उस मंत्र से बांध दिया बारुणी पास। कई सारे पास होते हैं, वरुण पास नाग पास, ये मंत्र का स्वरूप होता है, वो बांध देता है, बहुत कायदा है आजकल। क्यों बांधा, कब बांधा, प्रश्न उठेगा कब बांधा, ओहो जिस दिन महासम्मान प्राप्ति होने वाला था उस दिन घोर अपमान हुआ, जिस दिन राज तिलक होने वाला था उसी दिन वनवास हुआ। सुत्य अहनी, सोमरस पान करना, यज्ञ का फल मिलने वाला, सफलता मिलने वाली थी। उसी दिन महा अपमान, महा बेइज्जत, सुत्य अहनी, जिस दिन महान माने पूरे दुनिया में डंका बजने वाली थी, समाज में ये उद्घोष होने वाला था कि बलि महाराज ने ये यज्ञ करके इतना बड़ा काम कर दिया, पर उसी दिन महाअपमान हुआ। भगवान बार बार ललकार, दे कहां है त्रिपाद भूमि, चुप खड़े, उसी दिन अपमान हो रहा है। बांधा वरुण पास से, क्यों बांधा, भगवान ने तो आज्ञा नहीं दी थी, भगवान ने डायरेक्ट आज्ञा नहीं दी थी गरुड़ को जाकर के इशारा किया अथवा ना 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 ना, इशारा बिल्कुल नहीं किया। इसमें लिखा भागवत के अर्थ भारी गंभीर, देखिए लिखा हुआ, अथ प्रभु चिकीर्षितम, प्रभु करना चाहते थे। इस बात को गरुड़ जी समझ लिए, क्योंकि भगवान के जो भक्त होता है, भगवान का भक्त, वो भगवान के हार्दिक इच्छा को समझ जाता है। तो गरुड़ को समझने में देर नहीं हुई, उसने वरुण का मंत्र पढ़ा, तुरंत बलि महाराज हाकार, प्रभु चिकित्सितम, क्या प्रभु की चिकित्सा, क्या प्रभु की इच्छा। भगवान ने कहा गरुड़ इसको बांधो, बांधो इसको। तो गरुड़ ने बांधा। प्रभुपाद कहते हैं क्यों बांधा, बलि महाराज जी की सहिष्णुता तथा भक्ति असंदिग्ध रूप से अति श्रेष्ठ थी। ओह, भगवान दिखलाना चाहते थे मेरे भक्त कितना सहिष्णु होता है, हाउ मच टॉलरेंट माई डिवोटी इज, तृणादपि सुनी चेना तरूर इवे सहिष्णुना, ऐसे नहीं कहा महाप्रभु ने। यहां चैतन्य महाप्रभु ने केवल उपदेश मात्र दिया, सहन भी किया है, लेकिन बलि महाराज ने सहन किया, इतना सहन करना किसी के बस की बात नहीं है। राजा त्रिलोकाधिपति इंद्र पदाधिष्ठित धमकाया जा रहा है, लांछित किया जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है अपने पार्षद, अपने परिवार के सामने, दे सत्यनिष्ठ बलि को। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते थे कि मेरे भक्त की हार नहीं होगी, मेरा भक्त कभी हारेगा नहीं, उन्हीं के यश को प्रख्यापित करने के लिए। मेरे भक्त की कभी हार नहीं होती है, मेरा भक्त अगर फाइनल करता है वो करके रहता है। इन्होंने मुझे दिया और देगा ही, बलि के यश को प्रतिष्ठित करने के लिए। सभी आचार्यों ने, मैंने देखा श्रीधर स्वामी, बंसीधर, गिरधर लाल, बल्लभाचार्य, ये श्री इसी बात को सबने लिखा है, अपने स्वभक्त यश को प्रतिष्ठित करने के लिए। मेरे मित्रों, बंधु, माताओं, भगवान हमको यश देना चाहता है, ही वांट टू गिव नेम एंड फेम, देना चाहता है। हर बाप चाहता है मेरा बेटा कीर्तिवान बने, बने, बनना चाहता है, लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा ना, कीर्ति का कर्म तो करना पड़ेगा। हर बाप चाहता है, और परम पिता कैसे नहीं चाहेगा, वो चाहता है मेरा भक्त। इतिहास केवल इतिहास ही रहता है, एक बार व्यक्ति जन्म लेता है, एक बार मरता है, ये शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। Try to understand, इसी शरीर में इसी नाम का ऐसा और शरीर, नो, फाइनल, पुनर्जन्म होगा, लेकिन ये भीम और अर्जुन का शरीर, आपका शरीर, श्रीनिधि का शरीर, वीरभद्र का शरीर, किसी का भी एक सोई जड़, फर्स्ट एंड लास्ट, दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए व्यक्ति इसी जन्म में कुछ ना कुछ करके जाना चाहता है, बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि ये एंड है, आपको मिलेगा दूसरा लाइफ, पर ये शरीर नहीं मिलेगा। इसके इसका जो कर्म है, जो जो किया, जो कार्य, ये इसका इस शरीर में फाइनल हो जाएगा। तो भगवान बलि के शरीर में बलि को बहुत यश देना चाहते थे, नंबर वन कि मेरे भक्त की प्रसिद्धि हो और मेरे भक्त की सहिष्णुता लोग देखे पूरे संसार। और देखो भगवान लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, जो सहन किया उसी पर ही कृपा होती है। पूरे शास्त्र उठा देखिएगा, उठा करके, कहीं किसी को पिटने वाले को भगवान ने अपनाया नहीं। पांडवों ने कितना सहन किया, अपनी पत्नी की बेइज्जती अपने सामने अपने आंखों से देखी है, नहीं प्रभु, अपनी आंखों से, और किसी निवृत्त कोठरी पे नहीं, भरी सभा में धन छीन लिया, पत्नी की बेइज्जत हुई, दर दर भटकने लगे, जहर खिला दिया, आग से जलाने के लिए कोशिश की गई, सब बर्दाश्त कर लिया। तब जाकर के करुणा सिंधु की करुणा की लहर उमड़ी। पूरी शास्त्र में सहिष्णु पर ही भगवान की कृपा होती है। लड़ाई झगड़ा कपट द्वेषी इन पर कभी नहीं होती। बलि महाराज की यही सहिष्णुता है, हाउ टॉलरेंट। और हम लोग बात बात में लड़ जाते हैं, थोड़ी सी कोई बात हुई बस। इसका मुख्य कारण है सत्संग के प्रति श्रद्धा नहीं है। सत्संग के प्रति श्रद्धा होती है, सत्संग में अनमोल चीज मिलती है। बिना सहन किए भगवान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पूरी इतिहास देखो, ध्रुव 5 बरस के बालक देखो जो सहन किया, कौन सहन कर सकता। अभी दूध नहीं छोड़ा होगा 5 बरस का बच्चा, उसको इतना अपमान, उसकी मां कहती कि ध्रुव इसी शरीर में तो तुमको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट कह रही है इनडायरेक्टली कि तुमको मरना पड़ेगा। इससे और कठोर शब्द क्या हो सकता है? एक मां 5 बरस के बच्चे से कहती कि तुझे मरना पड़ेगा, ओ उसकी मां बर्दाश्त नहीं कर सकती। किसी मां अगर अपने किसी बच्चे से कह दे कि तुझे मरना पड़ेगा, वो मां तो उसको खा जाएगी चीर फाड़ करके। लेकिन ये सुनीति और ध्रुव रोते रह गए। पांडव, जयदेव, कोई भी साधु देखिए, ईसा मसीह को देखिए, नानक कबीर को देखिए, किसकी कुटिया जला दी गई, किसी को अपमानित किया गया, किसी को लांछित किया गया, टॉलरेंस। प्रभुपाद जी को चाकू मार दिया। कहीं भी देखिए, भक्ति की जो जड़ है वो सहिष्णुता है। नमंती फलिनो वृक्षा नमंती गुणिनो जनहा, शुष्क काष्ठम च मूर्खम च न नमंती कदाचन। गुणवान व्यक्ति भक्त ये झुक जाते हैं, और सूखी लकड़ी मूर्ख व्यक्ति ये टूट जाते हैं। भिक्षु देखो, वो ब्राह्मण कितना सहन किया, उसके ऊपर मलमूत्र तक त्याग देते थे, थूक थूकते थे, है ना। भगवान ने उस ब्राह्मण की कीर्ति गाई, अवंति ब्राह्मण, भिक्षु ब्राह्मण। ठीक है, गलती किया था, माइजर था, कृपण था, लेकिन इतना हद मलमूत्र तक त्याग दे और थूके, तब भगवान के कंठ से, मुख से अब ब्राह्मण की कीर्ति गाई जा रही है। इतना भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा जिसका यश प्रभु गाए? हम तो प्रभु जस गाते हैं भक्त, पर भगवान जिसका जस गाए, कितना बड़ा व्यक्ति वो नहीं होगा, है ना। सहिष्णुता। और दूसरा भाव है, भगवान भक्त पराधीनता भी दिखाना चाहते थे। भक्त में जो ममता और अहमता, इसको नाश करना। भगवान ने सोचा, गरुड़ को समझ में आ गया, गरुड़ ने सोचा कि प्रभु कह रहे हैं कि इनका जो ममतास्पद है संपत्त, इसको तो मैंने हर लिया, मेरे कहने के लिए कुछ नहीं है, मेरा है कुछ नहीं है, इजंट इट? दो बंधन तो हैं, मैं और मेरा, मैं और मोर तोरते तू तू तोर, यही तो बंधन है, एक अभिमान, एक अहम और एक मम, ममतास्पद अहमतास्पद। तो बलि के लिए और मेरा कहने के लिए कुछ भी नहीं था, एक सरसों एक पत्ता भी नहीं था कि कोई कह सके कि मेरा है। यस, सिंपल, एक ये फूल का पत्ता भी बलि महाराज नहीं कह सकते थे कि मेरा है, सब ले चुका था वामन भगवान, सब ले चुके थे। अब बलि महाराज जी के छाती में कुछ बात फुदक रही थी, मैं तो हूं ना, मैं हूं, है ना, मैं हूं अहम। ठाकुर जी ने कहा उसी पर अंकुश लगाओ, बांधो इसको, उसकी संपत्ति छीन ली और मैं जो कर रहा है, जो शरीर को लेकर के, बांधो इसको, खत्म करो। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद सनातन गोस्वामी ने एक कंबल उड़ाता बोट कंबल, बढ़िया वाला, ग्वालियर वाला, नरम नरम कंबल, तो उसको देख के भुट कंबल पाने प्रभु चाहे बार बार, अच्छा सनातन बाबा जी बनने आए हो, बढ़िया कपड़ा पहने हो क्या बात है। सनातन गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा, बोले महाप्रभु को अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसने उसको अपना जो जीजा या साला श्रीकांत को दे दिया, नाना एक गुदड़ी लाओ। एक कहावत है उर्दू में, मोटा मोटा फकीर और दुबला हकीम, इनके बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए मोटा फकीर और दुबला हकीम, हकीम माने वैद्य, बोले दुबला वैद्य अगर कोई होए तो उनकी बात, अरे खुद खुद खाना खाना उसका पच नहीं रहा है तो वो पछता तो मोटा हो जाता है, तो उसकी बात क्या माने। और मोटा फकीर अगर भक्ति भजन करता तो इतना मोटा कैसे आ जाता तो उसकी बातों में भी नहीं आना चाहिए, मोटा फकीर और दुबला हकीम, इन दोनों की बातों पे नहीं आना चाहिए। तो वो उसका जो मोटापा था किसका, बलि महाराज जी का, मैं राजा हूं, मैं इंद्रांग सिंहासन पर अधिष्ठित महाराज बलि हूं, और ठाकुर ने उसी पर डस मारी, बांधो इसको, अहमतास्पद मैं को ले लिया, खाली बिल्कुल जीरो। उसके बाद कृपा, इसी को दिखाने के लिए कि भक्त वात्सल्य, एक तो ये हो गया मैं और मेरा, इसको छीन लिया नंबर वन, नंबर टू दुनिया में सहिष्णुता को दिखाने के लिए, नंबर थ्री कि मैं अपने भक्त के बस होता हूं, यदि मेरे को नहीं देगा, उसका नहीं छीनेंगे, मैं द्वारपाल किसका बनूंगा, हमको द्वारपाल भी तो बनना है, किसका बनूंगा। तो स्वयं द्वारपाल बनेंगे, यश महाराज बलि को देंगे। ठाकुर जी के मन में गुदगुदी हो रही थी द्वारपाल बनने की, बलि तेरे जैसे भक्त का हम द्वारपाल बनेंगे, और ये हमारा भाग्य है। भगवान भक्त की सेवा करना चाहता है, भगवान भी भक्त की सेवा करना चाहता है और अपना भाग्य मानता है। सनातन धर्म के जो भाव को समझना सबके बस की बात नहीं है, ठाकुर चाहता है मेरा भाग्य। आहा, भागवत में कहा है मेरा भक्त जब जाता है उसके पीछे पीछे उनकी चरण रज के आशा से मैं चलता हूं, उनके पीछे उनकी चरण धूल मेरे माथे पे पड़ जाए। गंगा मैया सोचती है कब भक्त आकर के मुझ में स्नान करे, मैं पवित्र हो जाऊं। यहां सब उल्टी धारा है, सब उल्टी धारा। इसलिए भक्त भगवान के प्रेम में दिन डूबा रहता है, उसको पता चलता है, बड़े अद्भुत भाव ये है। मैं द्वारपाल बनूंगा। मैया यशोदा के प्रेम में पड़े, मैया मुझे डांट खाना बहुत अच्छा लगता है, आज तक किसी ने नहीं डांटा, इसलिए हम चाहते हैं मेरे से कोई प्रेम करे। डांट खाने के लिए, चोरी करने के लिए, गोपियों से लांछित होने के लिए गोपियों के घर गए, नहीं तो भगवान चोर थोड़ी हो सकता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो सब कुछ है, भगवान अपने आप को बिकना चाहते हैं। भक्तवात्सल्य, बिके सुदामा के ऋण में, आहा। और चौथी बात, भगवान अपनी असमर्थता प्रदर्शन करना चाहते हैं। द्वारपाल ऐसे नहीं बने, क्योंकि बलि ने जो किया उसको चुकाने में असमर्थ हुए, तब ना द्वारपाल बने। दल्लो भगवान असमर्थ हो गए सुदामा से, सुदामा को छिप करके दिए धन, क्यों सामने नहीं दिए? बोले सुदामा तुमने जितना दिया हमारे में ताकत नहीं है, हम उतना दे सके नहीं, दे सके तुम मांग के लाए हो, हम मांगने जाए तो कहां मांगने जाए, सर्वत्र मैं हूं, तो तुम्हारे भाव के अनुरूप मैं नहीं दे सकता, इसलिए हमको शर्म आती है, रात को दे दिया। दूसरी बात, गोपियों से कहा, गोपी तुम्हारा जो प्रेम है उसका प्रतिदान हम नहीं दे सकते, न पारे हम निरवध्य संजुजा सुसाधो कृत्यान विबुधायुषा पिबा यामाम भजन दूर जरगेह श्रृंखला। आप लोगों ने पारिवारिक बंधन को तोड़ करके मेरे पास आए हो, तुम्हारा कर्म ही तुमको पुरस्कृत करेगा, माने तुम्हारा जो प्रेम है वो प्रेम ही तुमको पुरस्कृत करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए राधा जी के चरण बंदन के, राधे देही पद पल्लवम उदारम, राधा जी के चरणों को मस्तक पर रख, प्रेमाधीनत्वम। और बलि के केस में यही केस है, द्वारपाल बने, क्योंकि बलि तुमने जो दिया हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमको इतना कोई अपमानित कर ही नहीं सकता। दुर्योधन का, अरे ये ग्वाला इसको बांधो, मेरे को बांधेगा? विश्व रूप मैंने प्रदर्शन किया, बांध ही नहीं सकता कोई मुझे। आखिरकार भगवान कहेंगे, बलि हमने झूठ बोला, तुमको प्रताड़ित किया, लांछित किया, फिर भी तुम टस से मस नहीं हुए, सत्य संधा। तो बलि महाराज जी की सहिष्णुता, उनकी सत्य संधता, सत्य संध माने सत्यन संध्या, संध्या माने जिसका निष्ठा, जिनकी निष्ठा सत्य में हो और सहिष्णुता में हो, ये प्रदर्शन करने के लिए, द्वारपाल बनने के लिए, अपने भक्तों को यश देने के लिए भगवान ने गरुड़ के भीतर प्रेरित किया, जाओ इसको बांधो। चिकित्सितम बबंध वारुण पाजेर सुत्य अहनी करता। सो मित्रों, ये अद्भुत प्रसंग है, इसलिए भागवत एक दिव्य ग्रंथ है। आपसे इसे रसिक भक्तों के मध्य बैठकर इसका आस्वादन करने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही कोर पाठकूठ में ठीक है, लेकिन रसिक भक्तों के साथ जो आस्वादन है, रसिक ही सा महाप्रभु ने कहा, निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुखमुखात अमृत दृश्यम पिबत भागवतम रसमाल एम मुहुर हो रस भूभाव का। रसिक जन, रसिक माने रस कहते हैं संबंध से जो आनंद प्राप्त होता है, जो भगवान के निज जन है, जो भगवान के भिन्न भिन्न, भगवान के साथ भिन्न भिन्न रसों से युक्त है, उनको रसिक कहते हैं। व्याकरण में हम लोगों ने पढ़ा है, रस युक्त इक, इक माने हे अर्थ में इक प्रत्यय होता है, रसिक जिसमें रस है, कोई शांत भाव में, कोई दास भाव में, कोई बंधु भाव में, कोई प्रणय भाव में जुड़े हुए हैं, आप सब रसिक भक्त जन हो, आपके मध्य बैठ करके ये रसपूर्ण कथा का, रसराज की कथा है, तो उसका आनंद कुछ विशेष है। तो मित्रों, ऐसे ही भागवत की यदि हम चर्चा करेंगे, रसपान करेंगे, तो निश्चित रूप से भागवत भगवान की कृपा होगी और वो करुणा के वरुणालय प्रभु श्रीहरि, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनकी कृपा से सत्यम निष्ठा सहिष्णुता जब बनेगी बढ़ेगी तो भगवान निश्चित रूप से हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? अब तो गौशाला में प्रसाद है, जिनको प्रसाद के लिए जाना है जाओ, यदि प्रश्न का दुखा करना है करो, नहीं तो चलते हैं फिर। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, बलि महाराज जी की जय, सहिष्णु बलि की जय, विख्यात बलि की जय, महाभक्त महाजन बलि महाराज की जय, बामन भगवान की जय, सभी भक्त जन की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।